चैप्टर 92। अब आगे रुद्र ये सब बेहद सेडेक्टिव वॉइस में रूही के हल्की ग्रीन आंखों में देखते हुए बोल रहा था, पर रुद्र की सारी बात हमारी इनोसेंट रूही के सर के ऊपर से निकल गई और वे रुद्र को देख बोली, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ घर चलिए, अब तो शाम भी होने वाली है। रूही की बात पर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसकी रूह सच में काफ़ी इनोसेंट थी। रुद्र रूही से दूर होता है और रूही को देख कहता है, रूह तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो कुछ खा लो। इतना बोल वे कॉल कर लंच मंगवा लेता है। कुछ देर में लंच आ जाता है और वे वेटर लंच लगा वहां से चला जाता है। वहीं रूही जिसे सच में भूख लगी थी और वे काफ़ी खुश थी कि आज वे बाहर का खाना खाएगी, लेकिन जैसे ही वे खाना खाने बैठती है और बाउल से प्लेट हटा जैसे ही खाना निकालने वाली होती है, वैसे ही उस बाउल में उबली हुई सब्जियां देख उसका सारा मूड खराब हो जाता है और वे उस बाउल को वापस रख रुद्र को देख कहती हैं, ये क्या है, क्या हम ये खाएंगे? रूही की बात सुनकर रुद्र आराम से अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, हारू हम यही खाएंगे, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। इतना बोल वे रूही की प्लेट में वे उबली हुई सब्जियां डाल देता है और खुद भी अपनी प्लेट में निकालकर खाने लगता है। वहीं रूही अपनी प्लेट में उबली हुई बिना मिर्च मसालों की सब्जी देखती है तो उसे उल्टी आने लगती है। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि जिस चीज़ को देखकर ही उल्टी आ रही है वे उस चीज़ को खाएगी कैसे। तभी उसकी नज़र रुद्र पर पड़ती है जो बिना इमोशन से आराम से वे खाना खा रहा था, जिसे देख रूही मन में ही कहती हैं, ये शैतान देखो कैसे आराम से खा रहा है, ये इसी तरह बेस्वाद का खाना खाकर बेस्वाद सा बोलता रहता है। इतना बोल वे अपना मुंह बना चम्मच को अपने प्लेट में यूं ही घुमाने लगती है। वहीं रुद्र की नज़र जैसे ही रूही पर पड़ती है और वे उसे खाता हुआ नहीं देखता है तो उसके बोला, रू तुम खा क्यों नहीं रही हो? रुद्र की बात सुनकर रूही झूठ बोलते हुए बोली, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है और मुझसे और नहीं खाया जाएगा, मैंने परी के साथ मूवी देखते देखते काफ़ी कुछ खा लिया था, अब मुझे कुछ नहीं खाना। फिर अपनी प्लेट रुद्र की तरफ करते हुए कहती है, आप इसे भी खा लीजिए। वहीं रुद्र जब रूही की हरकत देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले पूछने पर इस लड़की ने कहा था कि इसे भूख लगी है और अब देखो किस तरह बहाने बना रही है। जिसे देख रुद्र अपना सर नामे हिला फ़ोन निकाल कुछ ऑर्डर करता है और अपना खाना खाने लगता है। कुछ देर में एक सर्वेंट दोबारा उस रूम में आता है और रूही के सामने छोले भटूरे पनीर चिली रख वहां से चला जाता है। वहीं रूही के नाक में जैसे ही छोले भटूरे और पनीर चिली की महक आती है उसकी भूख 10 गुना बढ़ जाती है और वे बिना रुद्र पर ध्यान दिए छोले भटूरे और पनीर चिली जल्दी जल्दी खाने लगती है, जैसे अगर उसने जल्दी जल्दी नहीं खाया तो कोई आकर उसके ये सब छीन लेगा। कुछ ही देर में रूही वे सारा खाना खत्म कर अपनी उंगलियां चाटने लगती है, क्योंकि उसे खाना सच में काफ़ी स्वादिष्ट लगा था। वे खाना खाने के बाद अपने हाथ को नैपकिन से पोंछते हुए मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रुद्र पर पड़ती है वे तुरंत अपना थूक निगल लेती है और रुद्र को एक फीकी सी मुस्कान दिए बोली, अगर आपने खा लिया हो तो हम चलें। रुद्र रूही को अपनी आंखें छोटी करके हुए देखकर बोला, रू अभी अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन अभी तो तुमने इतना सब कुछ कुछ मिनट में अकेले ही खत्म कर दिया। रुद्र की बात सुनकर रूही बोली, वे तो मैंने इसलिए खा लिया क्योंकि आपका पैसा बर्बाद ना हो, आप अकेले इतना कैसे खाते, इसलिए मैंने हेल्प कर दी। रुद्र रूही की बात सुनकर अपना सरनामे हिलाता है, क्योंकि उसकी इनोसेंट रूह को सही से झूठ बोलना भी नहीं आता था। इतना सोच वे रूही को ले मॉल से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक खंडहर वाली जगह पर एक लड़का कुर्सी से बंधा हुआ था और उसका चेहरा ब्लैक कलर के कपड़े से ढका हुआ था। वे लगभग चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ कोई है, प्लीज़ मुझे खोलो, कौन हो तुम लोग और मुझे इस तरह यहाँ लेकर क्यों आए हो, खोलो मुझे, तुम लोग जानते नहीं मैं किसका बेटा हूँ, अगर मेरे डैड को पता चल गया ना कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है तो वे तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इतना बोल वे फिर से चीखने लगता है। तभी उस रूम में रुद्र अपनी रौबदार औरा के साथ आता है और अपनी किंग साइज चेयर पर किसी राजा की तरह बैठते हुए अपने सामने बंधे उस लड़के को चीखते हुए देखने लगता है। फिर वे अमन को देख कुछ इशारा करता है, जिसे समझ अमन उन बॉडीगार्ड को कुछ लाने को बोलता है। कुछ देर में वे बॉडीगार्ड अपने हाथ में बड़ी बड़ी बाल्टी लेकर आता है, जिसे देख अमन उस बाल्टी को उस लड़के पर डालने को बोलता है। अमन की बात सुनकर वे बॉडीगार्ड एक एक कर उस बाल्टी का ठंडा बर्फ वाला पानी उस लड़के के ऊपर डालने लगते हैं। वहीं वे ठंडा पानी जैसे ही उस लड़के के शरीर पर पड़ा उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। उसे इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वे खुद को छोड़ने के लिए बोल रहा था, मगर रुद्र को उस लड़के पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया और वे मज़े से ये सब देख रहा था। इसी तरह आधे घंटे तक ठंडा पानी उस लड़के के ऊपर डलवाने के बाद रुद्र अपने आदमियों को रुकने का इशारा करता है और खुद अपनी किंग साइज चेयर से उठ उस लड़के के पास जा उसके जबड़े को पकड़ अपनी सर्द आवाज में बोला, अभी तो तुझे मैंने बहुत कम सजा दी है, आज के बाद कभी भी मेरी रूह को परेशान करने की गलती गलती से भी मत करना, वरना अगली बार मैं तुझे यू वार्निंग देकर नहीं छोड़ूंगा, सीधा तेरी जान ले लूंगा।
रुद्र की बात सुनकर वे लड़का जो कोई और नहीं जय था, वे कांपते हुए बोला, कौन रू? देखिए, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, आपको कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज मुझे छोड़ दो। जय की बात सुनकर रुद्र उसके जबड़े को छोड़ता है और अपने आदमियों से जय को कुछ देर और सबक सिखाने को बोल वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में, दिशा अनाथ आश्रम में अपनी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि उसे मीटिंग के लिए देवांश के साथ आधी रात को ही निकलना था, इसलिए वे गुस्से में पैकिंग करने लगती है। उसका देवांश के साथ इतनी दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर काम की वजह से वे चाहकर भी देवांश को मना नहीं कर सकती थी, जिसे सोच वे खुद से ही कहती हैं, एक बार जाने से पहले रूही से बात कर लेती हूँ तो सही रहेगा। इतना बोल वे अपना फोन निकाल रूही को कॉल करने लगती है, पर रूही अपना फोन उठा ही नहीं रही थी, जिसे देख वे निराश हो जाती है और उदास मन से फिर से पैकिंग करने लगती है।
पता नहीं क्यों अकेले देवांश के साथ इतनी दूर जाने से उसका मन घबरा रहा था कि जैसे वहां कुछ बुरा होने वाला है, पर वे अपने मन के घबराहट को इग्नोर कर फिर से पैकिंग करने लगती है।